हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 11 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर धरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्व अहं न जानि। पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जे हवे पिबस्व मृतुमेत देव गोविंद दामो धरमाधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 10 जिसका शीर्षक है सृष्टि के विभाग। अब तक हमने पढ़ा कि विदुर जी पूछ रहे हैं कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी को बहुत सारे आशीर्वाद दे दिए तो ब्रह्मा जी किस प्रकार से शरीर और मन से जीवों को उत्पन्न कर रहे थे, और कहते हैं कि आप मुझे शुरू से आदि तक मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संशयों को दूर कीजिए। विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते, तो मैत्रेय जी सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो इसलिए वो विदुर जी के हर प्रश्न के उत्तर देने के योग्य थे।
और मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न होकर उत्तर दे रहे थे कि हे विदुर, ब्रह्मा ने 100 दिव्य सालों तक तपस्या की, तो हमें भी कृष्ण की सेवा करनी है, उसमें थकना नहीं है कि हमें भी थोड़ा आराम मिल जाए। देखो, तपस्या करना, कृष्ण की भक्ति करना, उससे सब कुछ हो सकता है। सिर्फ हमको खाली भक्ति करनी है, नाम स्मरण करना है, भगवान की सेवा करनी है, उसके बाद क्या मैरिकल। अब ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे हैं, सृष्टि मतलब पूरी सृष्टि जो प्रलय हो गई थी, वो केवल भगवान की तपस्या करके, भगवान का भजन करके उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि जो नाम भजन हम करते हैं उसमें कितना पावर, सब कुछ हो सकता है, सिर्फ नाम भजन अच्छा होना चाहिए। जो भक्त होते हैं उनको भगवान की सेवा करने में इतना रस आता है, वो कभी भी थकते नहीं हैं। फिर आगे बताया गया कि जब ब्रह्मा जी तपस्या किए, तो फिर जहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे वो जगह तेज हवा के कारण कांप रही थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो माया शक्ति हमें ऐसे ही गिराने का प्रयास करती है, तो हमें भी ब्रह्मा जी की तरह दृढ़ बनना चाहिए। जिस तरह इतनी तेज वायु चल रही थी, तो ब्रह्मा जी ने उस वायु और जल दोनों को पी लिया। तो ब्रह्मा जी से लेकर जो भी जीव है वो माया से संघर्ष कर रहे हैं, और हमारी जीत तब होगी जब हम कृष्ण पर पूरी श्रद्धा रखेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब उन लोगों को उत्पन्न कर दिया जाए जो ब्रह्मा से पहले ही उस पुष्प में पहले से ही स्थित हैं, यानी वो जो बीज के रूप में पहले से स्थित हैं। तो ब्रह्मा जी पहले 3 लोकों में, फिर 14 लोकों में बांट देते हैं उस कमल कोश को। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ऊपर के लोक हैं, ब्रह्म लोक, सत्य लोक, तप लोक, महर्षि लोक, ये खत्म नहीं होते हैं, उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि उसमें पवित्र जीव रहते हैं। फिर विदुर जी पूछते हैं कि हे ऋषि, आप काल का भी वर्णन करें जो बहुत अद्भुत है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अलग अलग लोकों में काल का प्रभाव अलग अलग होता है, भले उसके नाम एक ही हों, हर एक वस्तु काल पर आश्रित है। तो विदुर जी अब उसके विषय में पूछ चुके हैं, और अब मैत्रेय मुनि उसके विषय में बताएंगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकाराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानां आत्मानं लीलया सृज गुणव्यतिकाराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानं आत्मानं लीलया सृज। मैत्रेय उवाच, अर्थात मैत्रेय जी ने कहा, गुण व्यतिकर, गुण गुण यानी प्रकृति के गुण की अन्योन्य क्रियाओं का, व्यतिक्रिया मतलब जो प्रकृति के गुण हैं वो जब क्रिया करते हैं, मतलब सत्वगुण रजोगुण, और उनकी क्रियाओं का आकार यानी स्रोत, निर्विशेषो प्रतिष्ठित, निर्विशेष अर्थात विविधता रहित यानी उसके अंदर विविधता नहीं, और प्रतिनिष्ठित यानी असीम, पुरुष यानी परम पुरुष का। पुरुषस्तदुपादानम्, उपादानम् मतलब निमित्त, आत्मानम् अर्थात भौतिक सृष्टि, लीलया सृजतः, लीलया अर्थात लीलाओं द्वारा, सृजतः यानी उत्पन्न किया। तो सबसे पहले जो बात समझने की है वो यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है, अर्थात जो काल, हम जिसको काल कहा जाता है, उनका प्रश्न यही था ना कि काल के विषय में बताइए। तो ये काल क्या है? प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाओं का स्रोत, जो भी प्रकृति के तीनों गुण कार्य कर रहे हैं ना, वो काल के प्रभाव से कर रहे हैं, काल के कारण कर रहे हैं। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है, यानी काल जो है उसकी कोई सीमा नहीं है कि बस यहाँ पर काल खत्म हो जाएगा। काल की कोई सीमा नहीं है, काल सदैव से एज इट इज चलता रहता है, अपरिवर्तनशील है। और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। भौतिक जो सृष्टि की सृजन लीला है उसमें भगवान के निमित्त रूप में, भगवान के निमित्त रूप में मतलब ये भगवान का काम है ना, काल के द्वारा। भगवान कहते कालोस्मि लोकक्षय, ये मैं काल बनकर आता हूँ और सारे लोगों का विनाश कर देता हूँ। तो ये काल जो है वो भगवान का ही निमित्त बनकर आता है और हरिक्षण विनाश हो रहा होता है। हम अगर देखें तो हरिक्षण जीव का, वस्तुओं का विनाश हो रहा होता है, हमारे शरीर का। और इस बात को तो साइंस भी मानती है कि 7 साल में एक बॉडी के सारे सेल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और नए तब तक आ जाते हैं। तो मतलब हर क्षण जो ये विनाश हो रहा है वो क्या है, भगवान के निमित्त काल ही ये कर रहा होता है, ये काल के ही कारण हो रहा होता है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेष काल तत्व भगवान के उपादान यानी निमित्त के रूप में भौतिक जगत की पृष्ठभूमि है। ये भौतिक जगत जो है पृष्ठभूमि मतलब उसका इतिहास काल के द्वारा हमको पता चलता है, ये भगवान का ही निमित्त रूप है। तो यह भौतिक प्रकृति को प्रदत्त की गई सहायता का घटक है। भौतिक प्रकृति उसको काल की सहायता प्रदान की गई है कि समय के साथ साथ सब नष्ट होता है। कोई भी नहीं जानता कि काल कब प्रारंभ हुआ और इसका कब अंत होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया ना कि ये अंत रहित है, सीमा रहित है। तो काल कब से है, ये समय कब से है? हमारा दिन तो शुरू होता है जब सूर्य उदय होता है, लेकिन ये सूर्य कब से उदय हो रहा है, कब से ये संसार चल रहा है? तो ये स्टार्ट के विषय में किसी को किसी भी किताब में ऐसे नहीं लगा लिखा हुआ कि इस समय स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब लिखा गया होगा तब तो समय पहले से स्टार्ट हो गया होगा। तो किसी को नहीं पता कि काल कब प्रारंभ हुआ, और ये भी नहीं पता कि यहाँ तक बस एंड हो जाएगा। दिन समाप्त हो जा सकता है कि भाई 12 बज के आज का दिन समाप्त हो गया, लेकिन काल समाप्त नहीं होता। काल तत्व ही भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार का लेखा जोखा रख सकता है। जो कुछ भी सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है, वो सारा का सारा डिटेल काल के चक्र में होता है। यह काल तत्व सृष्टि का भौतिक कारण है, अतएव भगवान का स्वांश है। काल भगवान का निर्विशेष रूप माना जाता है। काल का मतलब होता है समय, और ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय जो है वो भगवान का ही एक स्वरूप माना जाता है। आधुनिक लोगों ने भी अनेक प्रकारों से काल तत्व की व्याख्या की है। कुछ लोग इसे लगभग उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा कि श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। उदाहरण 8, हिब्रू साहित्य में काल को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। उसमें कहा गया है कि ईश्वर ने भूतकाल में पैगंबरों के द्वारा पिताओं से कभी कभी और अनेक प्रकार से बातें की। मतलब यहाँ पर एक दूसरे संस्था हिब्रू के विषय में बताया जा रहा है। उनके शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि ईश्वर ने भूतकाल में पैगंबरों के द्वारा पिताओं से कभी कभी और उनके और अनेक प्रकार से बातें की।
तत्व मीमांसा की दृष्टि से काल को परम पूर्ण तथा वास्तविक के रूप में विभेदित किया जाता है। काल परम पूर्ण है और वास्तविक सत्य है। परम पूर्ण काल तो सतत है और भौतिक वस्तुओं की गति या मंदता से अप्रभावित रहता है। काल जो है वो कंटिन्यूअस है और संसार में चाहे कुछ भी गति हो रही है, वस्तुओं का कुछ भी उत्पन्न होना, पालन होना या समाप्त होना, उसका कोई भी प्रभाव काल पर नहीं चलता। कोई छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी तो काल कहीं रुक नहीं जाएगा कि भाई अब तो बहुत बुरा हो गया, या फिर अगर हम को ये सोचें कि भाई आज समय रुक जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। काल का प्रभाव किसी पर, किसी के कारण काल प्रभावित नहीं होता और काल का प्रभाव सब पर पड़ता है। काल की गणना ज्योतिर्विज्ञान तथा गणित के अनुसार गति, परिवर्तन तथा किसी वस्तु विशेष के जीवन के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। ज्योतिषी कैसे काल का वर्णन करते हैं? गति यानी स्पीड के इतना समय, और परिवर्तन के चेंजिंग जिस तरह से होती है, और किसी वस्तु विशेष के जीवन के परिप्रेक्ष्य, यहाँ तक समाप्ति हो जाएगा। तो ये ज्योतिष विज्ञान भी है ना, काल को इस तरह से बोलता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय रहेगा आपका, ये आपको करना होगा और उसके बाद ये परिवर्तन आपके जीवन में आएगा और उसके बाद ये समाप्ति। तो ये सब भी काल के विषय में बताएं। किंतु यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वस्तुतः काल का वस्तुओं की सापेक्षताओं से कुछ भी संबंध नहीं रहता, प्रत्युत हर वस्तु काल द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के रूप में बनती तथा परिगणित होती है। यानी जो भी काल का वस्तुओं की सापेक्षता से कुछ भी संबंध नहीं है, संसार में क्या है उससे काल का कोई संबंध नहीं है, बल्कि काल क्या कर रहा है, हर वस्तु काल द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के रूप में बनती तथा बिगड़ती है। काल सुविधाएं दे रहा है जिसके कारण वस्तु बन रही है, और मतलब जीवन बन रहा है, हमारा शरीर बनता है, और फिर वही काल के द्वारा ये वस्तुएं जो हैं वो बिगड़ दी जाती हैं। समय होता है तो फिर शरीर क्षीण होता है, वस्तुएं क्षीण होती हैं। मतलब यही हुआ कि काल पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वस्तुएं बने चाहे बिगड़े, लेकिन हर एक वस्तु के ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसी के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के कारण जो है ना वस्तुएं बनती हैं। जैसे हम कोई वस्तु रखते ना, बनाते हैं नई कोई चीज, और फिर सुबह को बनाते हैं, दो दिन के बाद वो समय उसको समाप्त कर देता है ना, खराब हो जाती है वो। कोई भी चीज अगर हम बना के रखते हैं तो वो समय के बाद वो खराब हो जाएगी, लेकिन इससे समय को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और कुछ समय जो है वो बनाने में हमको लगता है, मतलब वो बनती भी समय के कारण है, बिगड़ती भी समय के कारण है, लेकिन समय को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने इसी बात को यहाँ पर बताया कि काल का वस्तुओं की सापेक्षता से कुछ संबंध नहीं रहता, प्रत्युत हर वस्तु काल द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के रूप में बनती तथा परिगणित होती है। काल हमारी इंद्रियों की क्रियाशीलता की मूलभूत माप है। हम जो कार्य करते हैं वो उसका मूलभूत माप क्या है, काल है, जिसके द्वारा हम भूत वर्तमान तथा भविष्य की गणना करते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो तीन भाग में होता है। एक तो हमने हमारी जो क्रियाएं हैं, एक तो सारी जो हमने अब तक की वो हमारा भूतकाल है, वो भूतकाल में की। अभी जो हम कर रहे हैं वो वर्तमान में कर रहे हैं, और जो करेंगे वो भविष्य। तो ये सब काल हमारी इंद्रियों की क्रियाशीलता की मूलभूत माप है कि हमने यहाँ यहाँ ये कार्य किया। पंडित चाणक्य का कथन है कि काल के अल्पांश को भी करोड़ों डॉलर मूल्य देकर खरीदा नहीं जा सकता, अतएव बिना लाभ के खोए हुए काल का एक क्षण भी जीवन की सबसे बड़ी हानि है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने चाणक्य पंडित का एक बहुत अच्छा कोट लिखा है कि आप चाहे अपने जीवन की सारी धनराशि दे दीजिए और किसी से कहिए अभी आपकी मृत्यु होने वाली हो, और डॉक्टर से कहिए कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है पर मुझे एक घंटे का समय दे दीजिए, मैं अपनी 16 माला जप कर दूँ, तो आप चाहे कितने ही रईस हो डॉक्टर आपको वो समय नहीं दे सकते, क्योंकि समय आपको खिन कर मिलता है, वो काल समाप्त हो जाता है। तो सारा जीवन देकर भी, सारे जीवन की धनराशि देकर भी हम उस काल को नहीं खरीद सकते। बाकी धन वो तो हम थोड़ा समय देकर खरीद सकते हैं, है ना, जैसे हम थोड़ा समय कोई सेवा करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो धन तो काल के द्वारा खरीदा जा सकता है, लेकिन काल को धन के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए धन से ज्यादा महत्वपूर्ण काल है। इसीलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं कि एक थोड़ा सा भी समय अगर अतः बिना लाभ के खो दिया हमने, अपने कुछ उससे कुछ पाया नहीं, हमारा सबसे बड़ा हानि वही है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि क्या है कि हमने अपने समय को फिजूल में खो दिया, क्योंकि वो समय आप करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं ला सकते। काल ना तो किसी प्रकार के मनोविज्ञान के अधीन है, ना ही काल के क्षण अपने वस्तुगत वास्तविकताएं हैं। काल ना तो किसी प्रकार के मनोविज्ञान के अधीन है, यानी कि आप मनमानी से काल को नहीं बता सकते, और ना ही काल के क्षण अपने में वस्तुगत वास्तविकताएं हैं, किंतु वे विशेष अनुभवों पर आश्रित है। ये विशेष अनुभव ही है जो हमें काल के विषय में बताते हैं। इसलिए श्री राजीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काल तत्व भगवान की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारणों से मिला जुला हुआ है। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके जो कार्य हैं उनसे काल चक्र मिला हुआ है। बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति स्वयं भगवान के रूप में काल की अधीक्षता में कार्य करती है। सारा जो कार्य होता है ना वो काल के अधीक्षता में हो रहा है। भगवान कहते हैं मायाध्यक्षेण प्रकृति, और भगवान की अधीक्षता में ये काल ही है जो भौतिक प्रकृति के द्वारा कार्य करवाता है। तो यहाँ श्री जीव गोस्वामी ने कहा बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति स्वयं भगवान के रूप में काल की अधीक्षता में कार्य करती है। इसलिए ऐसा लगता है कि भौतिक प्रकृति ने विराट जगत में अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं उत्पन्न की हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में इस निष्कर्ष की पुष्टि इस प्रकार हुई है। भगवान कहते हैं मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये सारा जगत मेरी अध्यक्षता से कार्य करता है, और इस भौतिक जगत में ये सारी जीवित और निर्जीव हस्तियां पैदा होती हैं, और इसी भौतिक जगत की शक्ति के कारण ये बार बार नष्ट हो जाती हैं। यानी संसार में जो कुछ हो रहा है भगवान कह रहे मेरी शक्ति के अनुसार हो रहा है, लेकिन मेरी शक्ति भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति से इन वस्तुओं को बार बार जन्म देते हैं और बार बार ये सारी जो सृष्टि है उसका लय हो जाता है। तो ये वास्तव में भगवान का काल स्वरूप ही है जिसके कारण भौतिक जगत के वस्तुएं जो हैं बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो ये यही बात यहाँ पर श्री राजीव गोस्वामी कहते हैं कि प्रकृति स्वयं भगवान के रूप में काल की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, और उसी के कारण ये सारी वस्तुएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। आगे मैत्रेय मुनि इसी बात को आगे बताते हैं। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। शब्दार्थ, विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रम्। विश्वम यानी भौतिक चक्र, वै निश्चय ही ब्रह्म यानी ब्रह्म, तन्मात्रा मानो उसी तरह का, संस्थितम विष्णु मायाया, संस्थितम मतलब स्थित, विष्णु मायाया मतलब विष्णु की शक्ति से, ईश्वरेण परिचिन्नम, ईश्वरेण अर्थात भगवान द्वारा परिचिन्नम अर्थात पृथक की गई, कालेना व्यक्त मूर्तिना, कालेना अर्थात नित्य काल द्वारा, अव्यक्त यानी अप्रकट, मूर्तिना यानी ऐसे स्वरूप द्वारा। अनुवाद देखिए, यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्तियों के रूप में स्थिर है। एक बार फिर से अनुवाद देखिए, यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप यानी काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। अब ये जो भौतिक जगत, विराट जो जगत है, भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट, भौतिक शक्ति यानी जो भौतिक जगत की शक्ति है भगवान की, बाहरूनी शक्ति, बहिरंगा शक्ति, उसके रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल के द्वारा भगवान से विलग किया गया है। है तो भगवान की ही शक्ति, ये भौतिक जगत है वो भी भगवान की शक्ति है, लेकिन वो भगवान से विलग है। यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। भगवान से विलग है लेकिन फिर भी भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में, भगवान को हमें प्रकट तो भगवान दिखता ही काल के स्वरूप में है। भगवान की अभिव्यक्ति अर्थात भगवान का मुजाहरा आपको काल के स्वरूप में दिखता है। कुछ बोलते हैं ना लोग कि ये समय काल ही तो है, जो समय आता है तो किसी का जन्म होता है, समय आता है तो किसी को ना कुछ पालन होता है, उसका जीवन निर्वाह होता है, और समय आता है तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस भौतिक जगत में भगवान की अभिव्यक्ति यानी भगवान को अगर देख सकते हो तो समय के साथ साथ, क्योंकि समय पर ही सब कुछ होगा। अगर हम चाहें कि हम पहले समय हो जाए और हम जीवित रहें तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि समय जो है वो भगवान का ही स्वरूप है और वो अपना कार्य करके जाता है। तो यहाँ पर अनुवाद में यही लिखा हुआ है कि यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। असल में भक्तों, ये श्रीमद् भागवतम जो है कोई बुक नहीं है कि जिसको हम पढ़ें और वो हमको बिल्कुल सही सही से समझ में आ जाए। ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। तेने वांगमयी मूर्ति, वांगमयी मतलब भगवान को अगर लिटरेचर रूप में देखना है ना तो वो ये श्रीमद् भागवतम है। और संसार की कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी भगवान को समझ नहीं सकती है, क्योंकि भगवान जो है वो हमारी इंद्रियों से बहुत परे हैं। जिस तरह से भगवान को समझना असंभव है, उसी तरह से भागवत को भी समझना असंभव है। लेकिन सोई जाने जाको देहो जनाए, हम ये शब्द तो पढ़ सकते हैं, हम इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन
इन शब्दों को समझ तो वही सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। सोई जाने जाको देहो जनाए, जब भगवान हृदय में ज्ञान देते हैं, जब भगवान हमारे प्रयास से प्रसन्न होते ना, तभी इस भागवत के हर एक टॉपिक को हमारे समक्ष संपूर्ण रूप में भगवान प्रकट करते हैं। हमें श्रील प्रभुपाद जी का आदेश क्या है कि हमको भागवतम श्रवण करना है, तो हम अपना काम करें, बाकी हमारी जितनी सिंसियरिटी होगी ना, जितना जितना हमारे अंदर प्योरिटी होगी, तो भगवान उतनी उतनी कृपा करेंगे और भगवान हमको ऐसी बुद्धि देंगे कि हम ये जटिल जो समय का टॉपिक है या दूसरे जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं, उनको हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस पूरा भागवतम अभी हम पढ़ लें और पूरा भागवतम को समझ में भी आ जाए, पूरा भागवतम को याद भी हो जाए। तो लोग तो इसको 10-10 दफ़ा पढ़ते हैं फिर भी उनको समझ में नहीं आता। ये तो हमारे ऊपर कृष्ण की और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमको श्रवण करने का अवसर मिला है, तो हम अपनी ओर से 100% प्रयास करेंगे। लेकिन समझ में तो तभी आएगा जब भगवान हमें बुद्धि योग प्रदान करेंगे और हम इन शब्दों को समझने की योग्यता प्राप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे कि व्यास देव के समक्ष नारद पहले ही कह चुके हैं, भागवत 1.5.20, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरा, यह अव्यक्त जगत साक्षात भगवान है। ये इदम ही विश्वम भगवान इवेतरा, जो संसार है ना, वो उसमें कुछ भी नहीं है कृष्ण के अतिरिक्त, एक एक जरा भी वस्तु ही नहीं है, कोई भले जीवित हो या निर्जीव हो, जो कुछ दिख रहा है ना वो कृष्ण है, हर एक वस्तु कृष्ण। अभी देखो हम तो यही पढ़ रहे ना कि ब्रह्मा जी ने अभी तक सृष्टि का सृजन नहीं किया, तो केवल प्रलय के जल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वो जल भी भगवान ही है। भगवान ने कहा कि भूमि रापो नलो वायु, तो ये जो कुछ भी संसार में ना, वो भगवान की अभिव्यक्ति है। इस विश्व में कुछ भी कृष्ण के अतिरिक्त नहीं है, जहां नजर जाती है जो कुछ है वो कृष्ण ही की अभिव्यक्ति। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरा, यह अव्यक्त जगत साक्षात भगवान है, किंतु यह भगवान से परे या भिन्न कुछ और ही प्रतीत होता है। हमको क्या लगता है, संसार आकर्षित करता है और भगवान आकर्षित नहीं करता, जबकि कृष्ण का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, और हमारी बुद्धि पर मोहमाया का पर्दा चढ़ा हुआ है, इसलिए सच्ची वाला जो कृष्ण का स्वरूप है वो नहीं हमको आकर्षित करता, बाकी ये माया के स्वरूप में बहिरंगा शक्ति में है तो कृष्ण ही। आप आकर्षित चाहे किसी व्यक्ति से हो रहे हो, किसी वस्तु से हो रहे हो, वो आकर्षण इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर कृष्ण समाया हुआ है। जब तक किसी वस्तु के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर कृष्ण ना हो, तब तक वो आकर्षित करने की क्षमता ही नहीं रखती। कोई भी व्यक्ति जिसको आप प्रेम करते हो, आपको लगता है इसके कारण मैं भगवान से प्रेम नहीं कर पा रही हूँ, ये मुझे बहुत आकर्षित करता है ना, लेकिन उससे प्यार कर ही नहीं सकते हो जब तक कि उसके अंदर भगवान न हो। आप उससे प्रेम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि उसके अंदर भगवान है, क्योंकि कल जब उसकी मृत्यु होगी और भगवान यहाँ से निकल जाएगा, तब वही व्यक्ति वही एज इट इज पड़ा होगा, सिर्फ उसके अंदर भगवान नहीं होगा ना, आप वो प्रेम नहीं कर सकते उससे। प्रेम बल्कि उसको हम जलाने के लिए लेके जाते हैं, जिससे हम प्रेम का दावा करते हैं ना, उसको शमशान में लेके जाते हैं और जला देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि नहीं नहीं इसको तो जलाएंगे नहीं, इसके तो हम बहुत प्रेम करते हैं। और यहाँ तक बताया जाता है कि शमशान में और भी तेज तेज अना लकड़ियां बड़ी बड़ी डाल के उस चिता को जल्दी से जलाने का प्रयास किया जाता है, ताकि बहुत अच्छे से जले। चिता बहुत अच्छे से जलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा रह जाए, नहीं। तो इसका कारण क्या है, कारण यही कि उसके अंदर से भगवान निकल गए हैं, और प्रेम तभी तक संभव था जब तक कि उसके अंदर भगवान है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर बात है, हमको इस बात को समझना है कि इदम ही विश्वम भगवते इवेतरा, यह अव्यक्त जगत साक्षात भगवान है किंतु यह भगवान से परे या भिन्न कुछ और प्रतीत होता है। यह इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि काल द्वारा यह भगवान से पृथक किया गया है। ये कुछ समय के लिए है बहिरंग शक्ति का उत्पन्न हुआ है, और हमको लगता है कि हम भगवान से नहीं बल्कि भौतिक जगत से प्रेम करते हैं। भौतिक जगत में भी भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वो भी भगवान ही है, लेकिन ये बहिरंग शक्ति माया के द्वारा हमको इतना लुभावना लगता है कि इसी भगवान की शक्ति के कारण हम भगवान से दूर हो जाते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, यह टेप रिकॉर्ड द्वारा अंकित उस मनुष्य की वाणी जैसा है जो संप्रति अपनी वाणी से विलग किया हुआ है। जिस तरह टेप अंकन टेप पर स्थित है, उसी तरह सारा भौतिक जगत भौतिक शक्ति पर स्थित है और काल के द्वारा पृथक प्रतीत होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति की जो वॉइस होती है, अगर टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की जाए तो वॉइस तो उसी व्यक्ति की है ना, लेकिन उसमें रिकॉर्ड करके वो अलग व्यक्ति अलग कर दिया और वॉइस को अलग कर दिया। तो हम जब उस वॉइस को सुनते हैं और उस वॉइस के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा नहीं होते हैं, तो असल में तो वो वॉइस भी तो उसी की है ना। तो इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी थे कि यह टेप रिकॉर्डर के द्वारा अंकित उस मनुष्य की वाणी जैसा है जो संप्रति अपनी वाणी से विलग किया हुआ। जिस तरह टेप अंकन टेप पर स्थित है, उसी तरह सारा भौतिक जगत भौतिक शक्ति पर स्थित है। ये भौतिक, अभी टेप तब बोलेगा जब उसके बटन को दबाएंगे, तब बोलेगा ना। उस व्यक्ति का उससे कोई ना लेना देना नहीं है, बस उसने बोल दिया और वो टेप में रिकॉर्ड हो गया। उसी तरह भौतिक जगत भौतिक शक्ति पर स्थित है। भौतिक शक्ति जिस तरह से भौतिक जगत को चलाती है वैसे चलती है, और काल के द्वारा पृथक प्रतीत होती है, और समय के द्वारा हमको ये भगवान से अलग महसूस होता है। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की वस्तुगत अभिव्यक्ति है और उनके निर्विशेष रूप को प्रदर्शित करती है। ये वास्तव में जो भौतिक अभिव्यक्ति जो है, भौतिक जगत जो है, वो भगवान का ही एक स्वरूप है। ये बहिरंग शक्ति भगवान की है। भगवान कहते हैं मम माया, ये मेरी है, और उनके निर्विशेष रूप को प्रदर्शित करती है कि ये सब भौतिक जगत में जो कुछ भी दिख रहा है भगवान का ही एक निर्विशेष रूप है। निर्विशेष रूप मतलब प्रत्येक जगत में भगवान, प्रत्येक कण में भगवान का एक स्वरूप है ना, तो भगवान का एक निर्विशेष स्वरूप होता है। और जब हम भगवान को जान जाते हैं तो हम भगवान के साकार स्वरूप को प्रेम करने लगते हैं, वरना तो निर्विशेष स्वरूप में ही अटक के रह जाते हैं। जो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जो निर्विशेष दार्शनिकों द्वारा इतनी अधिक पूजित है, ये निर्विशेष जगत, ये जो भौतिक जगत है, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की वस्तुगत अभिव्यक्ति है। ये जो भौतिक जगत है वो भी भगवान की ही भगवान का ही एक अपीयरेंस है, और उनके निर्विशेष रूप में को प्रदर्शित करती है, जो निर्विशेष दार्शनिकों द्वारा इतनी अधिक पूजित है। बस निर्विशेष दार्शनिक क्या बोलते हैं, जो निराकारवादी फिलोसोफर, वो भगवान को नहीं मानते हैं। बोलते हैं भगवान तो कण कण में है, भगवान तो प्रत्येक वस्तु में है, भगवान तो यहाँ भी है। आप एक मूर्ति में क्यों भगवान देखते हो, है ना, मूर्ति के अंदर थोड़ी है भगवान, भगवान तो कण कण में है। लेकिन वही निर्विशेष दार्शनिक ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, मगर वो ये नहीं कह पाते
कि इस मूर्ति में भी भगवान है जिसको तुमने स्थापन करके मंदिर में रखा है। उनको प्रत्येक जगत के प्रत्येक कण में भगवान दिखता है, मगर उस मूर्ति में जिसको हम प्राण प्रतीक्षा करके उसकी उसका अभिषेक करते हैं, उसको पूजा करते हैं, उसमें उनको भगवान नहीं दिखता। ये उनका ये उनकी बुद्धि इतनी अकुशल होती, मतलब उनकी बुद्धि ऐसी होती नहीं है कि उनको भगवान दिखे। उनको प्रत्येक वस्तु में भगवान दिखते, लेकिन भगवान में भगवान नहीं दिखते। आगे मैत्री मुनि एक बहुत ही सुंदर बात बताते हुए कहते हैं, यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्। यथे दानीम तथाग्रे, यथे यानी यथा जिस तरह, इदानीम यानी इस समय, तथा उसी तरह, अग्रे मनी प्रारंभ में, च पश्चात यानी अंत में, अपि भी एतत इदानीम वैसा ही रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें मैत्रेय मुनि बोलते हैं, यथे इदानीम यथाग्रे, यह विराट जगत अभी जैसा है, जैसा अब है वैसा ही रहता है, और यहाँ पश्चात अपि एतद ईदृशम, और यह भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में ही ऐसा ही रहेगा। तो हमको तो लगता है कि यह संसार प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, है ना। और हम देखते हैं आजकल तो कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है साइंस, कैसी कैसी क्रिएशंस हो रही हैं, कैसी कैसी एडवेंटेज हो रही हैं, इतनी सारी है ना इन्वेंशंस हो रही हैं। तो ये तो बहुत जो भौतिक जगत है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है कि ये जो भी क्रिएशंस हैं, जो इन्वेंशंस हैं, वो भी पहली बार नहीं हो रही हैं। ये जो हमने, हमको लगता है कि हमने ये किया है, ये सब कुछ हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, शिला प्रभुपा जी बहुत सुंदर बताएंगे, शिला प्रभुपा देखिए, शिला प्रभुपा जी कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.8 में कहा गया, भूत ग्रामम इमम कृष्णम प्रकृतिर वशात, अर्थात भौतिक जगत के शाश्वत प्राकट्य पालन तथा संहार के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम है। ये भौतिक जगत अपने समय पर प्रकट होता है, कुछ समय के लिए यहाँ रहता है, पालन होता है, और फिर बाद में उसका विनाश हो जाता है। ये कंटिन्यूस ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा हुआ था कि ये प्रकट नहीं हुआ था, या कभी ऐसा हुआ था कि ये सब एडवांसमेंट नहीं हुई थी, या कभी ऐसा हुआ था कि उसका प्रलय नहीं हुआ था। भूत ग्रामम इमम कृष्णम प्रकृतिर विषाद, तो ये प्रकृति जो है वो इसी तरह शाश्वत रूप में प्रकट होती है, पालन होती है, इसका संहार होता है, इसी के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम है। जिस तरह यह अभी उत्पन्न किया गया है, बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरह यह भूतकाल में था और काल क्रम में पुनः सृजित, पालन और विनष्ट होता रहेगा। यह होता रहता है, अतः काल के क्रमबद्ध कार्यकलाप स्थायी और शाश्वत हैं, और इन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। ये काल के प्रभाव से बार बार प्रकट होता है, बार बार इसका लय हो जाता है, बार बार इसका पालन होता है, कंटिन्यूस ऐसा चलता रहता है। तो ये काल के जो कार्यकलाप हैं वो स्थाई हैं, वो शाश्वत हैं, वो इटर्नल काल है, और वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई प्रलय आएगा तो सब नष्ट हो जाएगा और फिर कभी भी क्रिएशन नहीं होगी। नहीं, वो काल समय जो है वो अपने समय पर फिर से क्रिएट करेगा, पुनः सत्ययुग आएगा, फिर वापस से त्रेता युग आएगा, वापस से द्वापर युग आएगा, वापिस से कलयुग, वापिस से प्रलय, तो ये छोटी छोटी प्रलय आती रहेंगी जैसे हमने कल पढ़ा। तो ऊपर के जो सत्यलोक हैं या जो तपोलोक है, जो ऋषि लोक हैं, वो नष्ट नहीं होंगे क्योंकि उनमें तो पवित्र लोग रहते, लेकिन हमारे जैसे पतित जीव सारे नष्ट हो जाएंगे। और फिर जब कल्प पूरा होगा, ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग जब पूरे हो जाएंगे, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक महाप्रलय आएगा। वो भी जो है ना, वो ऐसा प्रलय होगा कि उसमें भी सारे लोग नष्ट नहीं होंगे, लेकिन हम सब नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद पुनः से क्रिएशन होगी। और फिर जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब ब्रह्मा जी भी नष्ट होके भगवान विष्णु के अंदर चले जाएंगे और फिर पुनः क्रिएशन होगी। तो ये काल क्रम से कंटिन्यूस होता रहता है। संसार के लिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए, अरे ये हो गया वो हो गया, ये होता रहता है। कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिस पर आश्चर्य करो, कुछ ऐसा नहीं है जिस पे दुख करो, क्योंकि भगवान ने कहा अशोचा नन्व शोचस्तम। इस संसार में ना ही किसी के जन्म पर आश्चर्य करो और ना ही किसी के मरण पर शोक करो, क्योंकि ये कंटिन्यूस होता रहता है। अगर दुख करना है ना, तो उस समय के ऊपर करो जो भगवत भजन के बिना ही गुजर जाए, क्योंकि वो समय आपके जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। और वो समय गुजर गया तो आप अपने जीवन की पूरी पूंजी देकर भी उसको नहीं खरीद सकते हो। इसलिए वो ही आपका लॉस है, उसी पर दुख करो कि समय जो है उसको हमें इतना ध्यान से, इतना संभाल के खर्च करना है कि इस समय में, और समय की सबसे बड़ी कदर क्या है, हमें बोलते ना समय का कदर करो, समय की कदर करो, समय की सबसे बड़ी कदर क्या है कि उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। समय वही सफल होता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप घर सेट कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन वो समय अगर ये सोचकर खर्च कर रहे हो कि भगवान तुमने ये ड्यूटीज दी हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर बता रहे हैं कि अभिव्यक्ति अस्थायी तथा आकस्मिक है। अभिव्यक्ति मतलब संसार में तो जो कुछ दिख रहा है वो तो अशाश्वत है, अस्थायी है, वो तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन साथ में आकस्मिक है कि अचानक से आता है, सब कुछ अचानक से चला भी जाता है। लेकिन भले ही वो अस्थायी हो, भले ही आकस्मिक हो, परंतु झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है। ये संसार अस्थायी है, लेकिन क्योंकि भगवान का ही अंश है इसलिए ये मिथ्या नहीं है। ये बहिरंगा शक्ति भी उसका भी स्वरूप है। यहाँ पर हम लोग कोई कार्य करेंगे, ऐसा नहीं कि मिथ्या है बस उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। वो ये संसार सपने की भांति कहा जाता है कि भाई ये सपने की तरह है, हम आए हैं कल, वो इसलिए कि क्योंकि बहुत समय, थोड़े समय के लिए है, लेकिन सपने में किए गए कार्य को आपको दंड नहीं मिलता। सपने में अगर आपने किसी का खून कर दिया तो आपको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन इस संसार में यदि आप किसी को मारोगे तो उसका आपको फल भोगना पड़ेगा। तो ये संसार मिथ्या नहीं है, ये संसार अशाश्वत है, यानी अस्थायी है, समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये संसार जो है उसका एक रियलिटी है। और वो क्या है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और भगवान ने हमको इस भौतिक जगत में भेजा क्यों है, ताकि हम इस समय का सदुपयोग करें, इमं प्राप्य भजस्व माम। और इसे इस संसार को हम संसार में हम जिए कि हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है। अगर आपने इस जन्म में भगवान को प्राप्त नहीं किया, मतलब आपने जो कुछ भी प्राप्त किया वो सब आपका यहीं पर रह जाएगा, आपको चले जाना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा वो वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप तब तक आते रहोगे जब तक कि आपको भगवान नहीं मिल जाते। ये मन जो है वो इतना दुखी होता रहेगा। ये मन भगवान का है, इसलिए भगवान हमें भगवद गीता में सही यही बात बोलते हैं कि मन मुझे दे दो। और हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम संसार की हर एक वस्तु और व्यक्ति को मन देने के लिए तैयार है। खाने की कोई छोटी सी चीज होगी उसको मन देते, मेरा मन ये खाने को कर रहा है। कोई कोई फिल्म होगा, कोई थर्ड क्लास कोई चीज होगी, कोई जूते होंगे उसको भी मन, इस मेरा मन इस जूते में आ गया, वो देने उसको देने के लिए तैयार है। लेकिन मन भगवान को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये मन आपको तब तक भटकाता रहेगा जब तक कि आपने इसको भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर दिया। तब तक आपको इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि संसार में कभी भी आनंद से जीने नहीं देगा। ये मन जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है अगर वो भगवान के चरणों में नहीं लगता, और सबसे प्यारा मित्र है अगर वो भगवान के चरणों में लग जाता है। क्योंकि जब मन भगवान में लगेगा तो आपको भगवत प्राप्ति होगी, और यदि संसार में लग गया तो आपको बार बार मरना और बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो हमको अपने मन को अपना मित्र बनाना है। उसका केवल एक ही तरीका है कि हम भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें। जिस श्रवण करते जाएंगे ना, तो मन भगवान की तरफ आकर्षित होता जाएगा। भले कुछ भी हो, समय निकाल कर भगवान के लिए श्रवण करना। और जब तक श्रवण नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा अध्ययन, हमारा कीर्तन नहीं होगा, तब तक हमारा जप बच्चा नहीं होगा। इसलिए समय निकालना है, कैसे भी करके श्रवण करना है। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, सर्गो नवा विदस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु या काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रम सर्गो नव विदस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु या काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रम। सर्गो यानी सृष्टि, नवविधि अर्थात नौ भिन्न भिन्न प्रकार से, तस्य इसका, प्रकृतो प्राकृत वैकृतस्य, प्राकृत यानी भौतिक, वैकृत यानी प्रकृति के गुणों द्वारा, तू यानी लेकिन, यह यानी जो, काल द्रव्य गुणय रस्य, काल यानी नित्य काल, द्रव्य यानी पदार्थ, गुण यानी गुण द्वारा, अस्य यानी इसके, त्रिविध प्रतिसंक्रम, त्रिविध यानी तीन प्रकार के, प्रतिसंक्रम अर्थात संहार। अनुवाद, उस एक सृष्टि के अतिरिक्त जो गुण की अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होती है, नौ प्रकार की अन्य सृष्टियां भी हैं। नित्य काल भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय तीन प्रकार का है। अब यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी हमें समझाएंगे कि श्लोक में मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, नियम बंध सृजन तथा संहार परम इच्छा के रूप में होता है। जो कुछ हो रहा है, सृजन होता है फिर संहार होता है, सृजन होता है फिर संहार होता है, किसकी का इच्छा से होता है? परम इच्छा। भगवान ऐसी इच्छा क्यों करते हैं कि जीव बार बार जन्म ले? भगवान ऐसी इच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान जीव से बहुत प्रेम करते हैं और जीव को बार बार अवसर प्रदान करते हैं कि आप बार बार इस भौतिक जगत में आकर अलग अलग समय में, क्योंकि उसको भेजते हैं, अगर एक ही व्यक्ति, एक ही प्रकृति, एक ही सर्कमटेंसेस में रहेगा तो फिर वो उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान एक समय देते हैं कि भाई इतना समय मैं आपको देता हूँ। जैसे एक टीचर एक साल तक एक स्टूडेंट को पढ़ाता है और कहता है कि इस समय में आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आप इस क्लास को पास करके आप नई क्लास में जा सको। लेकिन यदि वो फेल हो जाता है फिर उसको वापस उसी क्लास में भेजा जाता है, नई क्लास में नहीं भेजा जाता है ना। लेकिन अगर वो पांच दफा उसी क्लास में फेल हो जाएगा ना, फिर पता है क्या करेंगे? फिर उसको उससे भी छोटी क्लास में भेज दिया जाएगा, ताकि क्योंकि वो उस क्लास में तो योग्यता ही नहीं रखता ना। तो इसी तरह से मनुष्य जीवन मिला है, अगर हम इसको सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर ऐसा मत समझिए कि मनुष्य जीवन ही मिलता रहेगा। फिर हो सकता है हमारे गुणों के अनुसार हमको पशु बना दिया जाए, पक्षी बना दिया जाए, तब तो ना जाने वापस हमको कभी अवसर मिलेगा भगवान की सेवा करने का। आज जो हम भगवान को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान को प्रसाद बनाकर खिलाने का अवसर, भगवान का श्रृंगार करने का अवसर, भगवान को पुष्पाभिषेक करने का अवसर, भगवान को सुंदर से सजाने का अवसर, भगवान की आरती करने का अवसर हर जन्म में नहीं मिलता है। भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर हर जन्म में नहीं मिलता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहकर अपने इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये तो संहार और जो संसार का सृजन है वो तो नियमबद्ध रूप से होता रहा है भगवान की इच्छा से। भौतिक तत्वों की अन्योन्य क्रियाओं से अन्य सृष्टियां भी होती हैं जो ब्रह्मा की बुद्धि के द्वारा घटित होती हैं। बाद में इनकी विशेष व्याख्या की जाएगी। संप्रति केवल प्रारंभ जानकारी दी गई है। तीन प्रकार के प्रलय के कारण हैं। एक, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण। दो, अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण। तथा तीन, मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ डिटेल दिया नहीं है इस श्लोक का। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाद में इन नौ प्रकार की जो प्रकृतियां हैं उनको भी आगे जाके समझाया जाएगा, और जो ये तीन प्रकार के प्रलय के जो कारण हैं, यहाँ पर बताया भौतिक तत्वों के तथा मनुष्यों के कार्य के गुण के कारण प्रलय तीन प्रकार का हो रहा है। तीन प्रकार के कारण बताए गए हैं, किस तरह से होगा वो आगे जाके बताएंगे। पहला है संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण। एक प्रलय होता है कि पता है कि भाई इस समय ब्रह्मांड का काल होना है, एक समय होता है, एक निर्धारित समय के बाद ब्रह्मांड का नष्ट हो जाएगा। दूसरा, अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण। अनंत शेष जो है वो उनके मुख से अग्नि निकलती रहती है, उसके कारण प्रलय होता है। और दूसरा, मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप, जो हमारे गुणात्मक कार्य हैं, जैसे हम अगर तमोगुण में कार्य करते हैं, सत्वगुण में कार्य करते हैं, उसके कारण जो है ये होता है भौतिक तत्वों या मनुष्यों के कार्यों के गुणों के कारण प्रलय हो रहा होता है। प्रलय मतलब क्षीण होता रहता है जीवन का। तो इसके कारण ये तीन हैं। इसको डिटेल से श्रील प्रभुपाद जी आगे जाके समझाएंगे। दूसरे, यहाँ पर सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस श्लोक में जो ब्रह्मा की बुद्धि के द्वारा घटित होते, बाद में इनकी विशद व्याख्या की जाएगी। संप्रति केवल प्रारंभिक जानकारी दी गई है। अभी सिर्फ इतना जानना है कि नौ प्रकार की अन्य सृष्टियां और भी होती हैं और प्रलय तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको डिटेल से समझेंगे। आगे कहते हैं, आद्यस्तु महतः सर्गो गुण वैष्म्यमात्मना द्वितीयस्त्व हमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय। आद्यस्तु महता सर्गो गुण वैष्म्यमात्मना द्वितीयस्त्व हमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय। आद्यस्तु महतः सर्गो, आद्य यानी प्रथम, तु यानी लेकिन, महतः यानी भगवान से पूर्ण उद्भास की, सर्गो यानी सृष्टि, गुण वैष्म्यम, गुण वैष्म्यम यानी भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया, आत्मनः ब्रह्म का, द्वितीय दूसरी, तु लेकिन, अहमः मिथ्या अहंकार, यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदय, यत्र जिसमें द्रव्य यानी भौतिक घटन, ज्ञान यानी भौतिक ज्ञान, क्रियाउदय अर्थात कार्य की जागृति। अब यहाँ पर सृष्टियों के नाम हैं।
नौ सृष्टियों में से पहली सृष्टि, महतत्व तत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की सामग्री है। पहली सृष्टि क्या है? महतत्व। महतत्व क्या है? जो 24 तत्व हैं, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। ये महतत्व तो निर्जीव हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, लेकिन इसके अंदर भगवान की उपस्थिति, भगवान जब इसके अंदर उपस्थित हो जाते हैं तो उसके कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। और दूसरी सृष्टि क्या है? द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक गठन, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। पहली सृष्टि महतत्व है और दूसरी सृष्टि क्या है? अहंकार। और अहंकार में क्या है कि हम जो कार्य करते हैं, भौतिक गठन यानी जो कार्य होता है, और हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, भौतिक ज्ञान और भौतिक कार्यकलाप जो हम क्रिया करते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक सृष्टि के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वह महतत्व कहलाता है। अब पहली सृष्टि, नौ सृष्टियां बताइए ना, पहली सृष्टि क्या है? महतत्व। भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या स्वरूप का कारण है, या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। ये भौतिक जगत जो है वो भौतिक तत्वों से बना है, लेकिन जीव भौतिक तत्वों से नहीं बना है। जीव किससे बना है? जीव भगवान का अंश है। भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या स्वरूप का कारण है। जो भी हम भौतिक जगत में कार्य करते हैं, जो सुख दुख वो हम क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और उस या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बने, अपने आप को हम समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, भौतिक जगत से बने, तो यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने का कारण है। ये मिथ्या अहंकार कि मैं ये शरीर हूँ या मैं मन हूँ, शरीर को और मन को मैं समझना ये मिथ्या अहंकार है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को मैं समझते हैं, तब इस संसार की किसी भी वस्तु और व्यक्तियों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा प्रेम, मेरा भाव, मेरा आकर्षण केवल भगवान के प्रति होगा। तो शरीर और मन को मैं समझना ये मिथ्या अहंकार है। जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने का कारण है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के दूसरे चरण में होती है। भौतिक संसाधन यानी भौतिक जो वस्तुएं हैं, और कार्य करने की क्षमता और जो हम कार्य करते हैं, एवं ज्ञान की उत्पत्ति, ये तीन, भौतिक वस्तुएं, कार्य और ज्ञान, ये सृष्टि के दूसरे चरण में होती हैं, अर्थात महतत्व के बाद। महतत्व उत्पन्न हो गए, खाली इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद भौतिक जगत का विकास होगा, उसके बाद कार्य होंगे और उसके बाद ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों के साधन है। ज्ञान किससे होगा? जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उसके द्वारा, जो हमारी आंख देखेगी, कान सुनेंगे, मन से जो हम ना सोचेंगे, हम इंद्रियों, आंख, कान, नाक, त्वचा, रस्ता, इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का साधन है, अब ये ज्ञान और इंद्रियों के अधिष्ठाता देव, जैसे हमारी आंखों के देवता हैं सूर्य देव, हमारे कर्णों के देवता हैं अश्विनी कुमार, हमारी जिह्वा के देवता हैं अग्निदेव, तो इस तरह से उनके साधन हैं कर्म के। अब पहले तो महतत्व उत्पन्न हुआ, उसके बाद हमारी महतत्व से हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों से ज्ञान, और ज्ञान किस ज्ञान का कारण सबब उन ज्ञान के जो देवता हैं, इंद्रियों के जो देवता हैं उनके साधन। कर्म के अंतर्गत कर्म इंद्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देव आते हैं। अब कर्म किससे होगा? हमारी कर्म इंद्रियों के द्वारा। आंख कान नाक त्वचा रसना ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और हाथ पैर लिंग जिह्वा तथा गुदा ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों की सहायता से हम करते हैं। ये सब द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न होती है। अब पहली सृष्टि क्या थी? पहली सृष्टि महतत्व, ठीक है, और महतत्व के बाद महतत्व में पंच महाभूत ले लीजिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है, ये सब हो गए। उसके बाद दूसरी सृष्टि क्या है? ज्ञान और कर्म इंद्रियां और उनके अधिष्ठाता देव, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ठीक है। द्वितीय और उसके द्वारा जो भी कार्य होता है उससे अहंकार होता है कि मैंने ये कार्य किया। और इसके बाद तीसरी सृष्टि इंद्रिय विषय है, जो कि आंख का विषय, दृश्य, रूप, रस, स्वाद, गंध। तो ये इस तरह से नौ सृष्टियां अभी हम पढ़ेंगे। ये हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। गुरु और गौरंगा से प्रार्थना कीजिए कि हम इस अद्भुत शब्दों को सही से पढ़कर समझ सके। और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।